श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक 14 या एनम वेति हंतारम यश्चैन मन्यते हतम उभौतो न विजानीत नायम हन्ति न हन्यते। आवाज नहीं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समस्त है तथा जो इससे मरा हुआ समस्त है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो बात स्पष्ट है। हरे कृष्ण। तो आवाज ज्यादा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात स्पष्ट है। विभिन्न विभिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्या करते हैं कि शरीर अस्थाई है, परंतु शरीरी देह स्थित आत्मा सनातन है। तो आशा है हम सभी यही बात बारंबार सुन रहे हैं, सुन रहे हो। फिर भी हम आज सुनते हैं और आशा है हम भविष्य में भी और बारंबार सुनेंगे, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो सब हाँ हाँ कहेंगे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में सदैव 24 घंटे में हर क्षण में हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, और उस भूल धारणा से मुक्त होना कठिन है। लेकिन जब तक हम इस भूल धारणा से मुक्त नहीं होते, तब तक आध्यात्मिक प्रगति का सवाल नहीं होता। आध्यात्मिक प्रगति का क्या मतलब? यही समझ कि जीवेश्वरूप हो कृष्ण दास। लेकिन अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो जीवेश्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण का सनातन दास है, तो ये बात बोल के भी उसमें भूल धारणा आएगी। तो एक प्रकार मतलब वो आत्मज्ञान अगर स्पष्ट नहीं होते, तो जीवेश्वरूप हो कृष्ण नित्य दास बोल के भी एक भूल धारणा हो सकती कि हम सोचते हैं कि शरीर ही कृष्णदास है। और दूसरी प्रकार की भूल धारणा हो सकती कि कृष्ण भी भौतिक वस्तु, कृष्ण भी प्राकृत वस्तु, प्राकृत अप्राकृत, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है प्राकृत? प्राकृत का मतलब जो इस भौतिक प्रकृति से घटित है, भूमिरापो नरो वायु खं मनो बुद्धिरे वच अहंकार इति अंगे बिना प्रकृति अष्टधा। श्री कृष्ण की बहिरंग प्रकृति में आठ प्रकार के मौलिक क्या बोलते हैं धातु है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये सब प्राकृत है और अपरयामित स्वयं प्रकृति विधि में परम जीव भूत महाबाहो यदम धार्यते जगत। और दूसरे प्रकार की प्रकृति है अप्राकृत, मतलब जो इस भौतिक प्रकृति के परे के अतीत है, वो कृष्ण की अंतरंग शक्ति से प्रकट होती है, वो आत्मा। तो शरीर और शरीरी प्राकृत और अप्राकृत में दिन और रात अंतर होते, काला और सफेद, मतलब एकदम विपरीत है। तो प्राकृत और अप्राकृत, क्या प्राकृत है, क्या भौतिक वस्तुओं से प्रकट होते हैं और क्या अप्राकृत, ये बात अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो जितने भी हम भक्ति करते हैं, जितने भी हम कृष्ण नाम कहते हैं, जितने भी हम तथाकथित भक्ति करते हैं, फिर भी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी अगर हम नहीं समझते हैं कि कृष्ण नाम अप्राकृत शब्द है। कोलो केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये कृष्ण नाम गोलोक धाम से आए हुए हैं। अगर हम ये बात नहीं समझते और ये बात अगर विश्वास करते लेकिन हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होते हैं या साक्षात्कार पूर्ण नहीं होते हैं, तो हम गोलोक भी प्राकृत वास्तु जैसे मानेंगे। तो प्राकृत अप्राकृत कैसे समझना है, तो प्राकृत भावना क्या है। अगर हम सोचते कि मैं इस प्रकृति भौतिक प्रकृति से उत्पादित वस्तु है, मैं ईश्वरीय हूँ, तो भक्ति करके भी हम कृष्ण से भौतिक कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। और अधिक लोग जो भक्ति करते हैं तो इस प्रकार की प्राकृत बुद्धि दूषित भक्ति करते हैं। देखिए कितने लोग आरती में उपस्थित होते हैं और कितने है प्रवचन में हरि कथा में। तो ज्यादा लोग जो आरती में आते वो अच्छा है कि आरती में आते, लेकिन सोचते कि आरती में उपस्थित होने से हम भगवान से आशीर्वाद मिलेंगे जिससे हमारी भौतिक जीवन शैली आराम से चलेगी। और ये भगवद गीता श्रवण करने से क्या होते हैं विश्लेषण, तो क्या है प्राकृतिक क्या है अप्राकृतिक। तो ज्यादा लोग की रुचि नहीं है ये सब बात सुनने से, सोचते हैं कि हम आरती देख लिया है उससे हमारा कल्याण हो गया है, तो वो काफ़ी भक्ति है। आज दिन में आधा घंटा भक्ति काफ़ी है। हम भक्ति कहते हैं किस लिए, भौतिक कल्याण के लिए। तो अगर हम सदैव भक्ति करेंगे तो किस लिए करना है, तो भक्ति करना है जिससे हम सुख शांति आराम में भौतिक जीवन भोग कर सकते हैं। तो अगर हम पूरे समय भक्ति में व्यस्त होंगे तो कैसे भौतिक भोग विलास करेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, अगर कई व्यक्ति भक्ति में आकृष्ट होते हैं और पूरा जीवन उत्साह करते करना चाहते हैं भक्ति में, तो वो व्यक्ति के कुटुंब और तथाकथित दोस्त खिलाफ कर। तो भक्ति करना अच्छा है लेकिन लिमिट है, इतना सा करो, ज़्यादा करने से क्या फायदा होता है। तो जीवन का उद्देश्य है भौतिक भोग विलास करना, और भक्ति भक्ति अच्छी है। कैसे भक्ति अच्छी है, भौतिक भोग विलास का सहायक का रूप में भक्ति अच्छी है, यही प्राकृतिक बुद्धि है। तो इस प्रकार की भक्ति वास्तविक भक्ति से बहुत दूर है। भक्ति क्या है, सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति है वो सब भौतिक उपाधि से मैं ईश्वरीय हूँ, वो पहली उपाधि है कि मैं ईश्वरीय हूँ, मैं ईश्वरीय और ईश्वरीय का यही नाम है। मैं गुजराती हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत महान है और मैं इसी जाति के हूँ, और मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, और ऐसे असंख्य भौतिक उपाधि है। लेकिन भक्ति का आरंभ होते हैं सर्वोपाधि विनिर मुक्त होने से। तो सर्वोपाधि का मूल है यही भूल धारणा कि मैं ईश्वरीय हूँ, और यही सब उपाधि प्राकृत है। और प्राकृत बुद्धि क्या है, मैं ईश्वरीय नहीं हूँ, ईश्वरीय गुजराती है, भारतीय है, ईश्वरीय का अस्थाई क्षणिक संबंध है कुटुंबों के साथ, लेकिन यही सब अस्थाई है। और यही शरीर का उपाधि है, इंजीनियर, डॉक्टर, टेम्पो वाला, ठेला वाला, ये सब उपाधि है। लेकिन भक्ति का शुरू होते है सर्वोपाधि विनिर मुक्त होने से। फिर ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अगर हम सोचे कि मैं ईश्वरीय हूँ तो इस प्राकृत बुद्धि से हमारे सभी प्रयत्न ईश्वरीय का इंद्रिय सुख के लिए होगा। अप्राकृत बुद्धि से समझना है कि भगवान कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करना जीव का धर्म है, और सब प्रयास होते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए। तो वो एक आदमी आया है क्लास के पहले और मुझसे पूछे, ये एक साधारण प्रश्न है, तो कैसे हम श्री कृष्ण की बहिरंग प्रकृति का प्रभाव से मुक्त हो सकते? तो यही उत्तर है कि बहुत कठिन है। दैवी ईशा गुणमायी मम माया दुरात्यया, इस भौतिक प्रकृति कृष्ण की शक्ति है और इसलिए तुझ जीव की शक्ति नहीं है। इस प्रभावशालिनी माया शक्ति का प्रभाव से मुक्त होना, लेकिन ये शक्ति शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की है और इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ति थे। श्री कृष्ण की कृपा से हम बहिरंग प्रकृति का प्रभाव से मुक्त हो सकते। तो यदि हम श्री कृष्ण का इंद्रिय सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं, अगर हम हमारे भौतिक इंद्रियों भगवान श्री कृष्ण का इंद्रिय सुख के लिए इनकी सेवा में लगाएंगे, तो श्री कृष्ण के इंद्रियों अप्राकृत है, भौतिक प्रकृति से परे। तो फिर हमारे भौतिक इंद्रियों यदि हम श्री कृष्ण के अप्राकृत इंद्रियों का सुख का प्रयास में लगेंगे, तो ये भौतिक इंद्रियों का परिवर्तन हो, वो भौतिक इंद्रियों का स्वभाव मैं भोगी हूं, मुझको खिलाओ, स्वाद मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो ये सब भौतिक इंद्रियों की याचना है, मुझको खिलाओ, मुझको सुंदर संगीत सुनाओ, मुझको अच्छा तस्वीर दिखाओ। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण को स्वादु भोजन अर्पण करना, श्री कृष्ण का आनंद का हेतु मनोरंजनी संगीत बजाना, मनोरंजन मतलब कृष्ण का मन, कृष्ण का मन का रंजन के लिए अगर हम संगीत करेंगे, अगर हम कृष्ण का दिव्य शरीर कृष्ण का श्री विग्रह को श्रृंगार करेंगे और खुद का शरीर के लिए वो फैशन पहनना लिपस्टिक लगाना वो ये सब भूल करेंगे और वो पूरा प्रयास करेंगे श्री कृष्ण का दिव्य रूप श्रृंगार करने, तो ऐसे हम हमारे भौतिक इंद्रियों का परिवर्तन हो और पूरा आध्यात्मिक बन जाएगा। तो यही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है कि समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान अप्राकृत मदन है। मदन कौन है? मदन का मतलब कामदेव, और कामदेव का प्रभाव से हम जो इस भौतिक अवस्था में फंस गए हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सार्य से पीड़ित होते हैं, मोहित होते हैं, और इसलिए हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इसी अवस्था में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में सदैव भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं। जब हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं तब हम सोचते हैं मैं मनुष्य, जब हम कुत्ता का शरीर है फिर हम सोचते हैं वो मैं कुत्ता हूँ, जब सांप का शरीर में हम सोचते मैं सांप हूँ, तो ये सही नहीं है। सही है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है शरीर के साथ, मेरा संबंध है मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध है परमात्मा के साथ। लेकिन ये सब समझना कठिन है क्योंकि अनादि काल से हमारा दुराभ्यास है, भौतिक इंद्रियों को का तर्पण करना, और हमारी साक्षात अनुभूति होती है। हम भौतिक शब्दों सुनते हैं, भौतिक रूप देखते हैं, और ऐसे ही हम सोचते हैं कि वो सब कुछ जो भौतिक वो सब वास्तविक है। हम ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि हमारा साक्षात का नहीं होते वास्तविक सत्य क्या है। हम सोचते हैं सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं इत्यादि यही वास्तविक है, लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। तो वास्तविक है क्या? वास्तविक है जो सच्चिदानंदमय है। सत्य का मतलब सही है जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी तु तद्विति येन सावमिदं ततम। अविनाशी क्या है? आत्मा जो शरीर का अंदर में है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो सत का मतलब जो स्थाई है सनातन है, और असत जो अस्थाई है। लेकिन हमारी इस भौतिक अवस्था में हमारी अनुभूति नहीं होते हैं तो वास्तविक सत्य क्या है? हम खाली जो अभी हमारे इंद्रियों को अनुभूति देते हैं तो वो हमारे अनुभव है, और हम सोचते हैं तो यही सही है। तो इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए कि हम ईश्वरीय नहीं है, हम आत्मा है, हम कृष्णदास है, और कृष्ण कोई भौतिक वस्तु नहीं है, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण पूरा अप्राकृत है और हम भी अप्राकृत हैं। वे ही पूर्ण परमात्मा भगवान है और हम वो परमात्मा भगवान का दास है। शरीर का नाश होगा लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होगा। तो बार बार सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और वो श्रवण भगवद गीता यथारूप परंपरागत ज्ञान होना चाहिए। मतलब यदि हम प्राकृत बुद्धि संपन्न व्यक्ति से भगवद गीता सुनेंगे तो कोई कल्याण नहीं होगा। जिनका कोई संस्पर्श नहीं होते, कोई युक्ति नहीं होती है अप्राकृत स्तर पर, तो हमको अप्राकृत ज्ञान नहीं दे सकते। तो ऐसे ही बहुत मायावादी है और मनोरंजनी कथाकार है जो गीता और भागवत प्रवचन बोलते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा व्यक्ति कोई कोई युक्ति नहीं है अप्राकृत वस्तु के साथ, तो इसलिए कृष्ण भगवत अप्राकृत आत्मा, तो ये शब्द बोल के भी हम ये सब बात सुनने से आध्यात्मिक स्तर पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक्चुअली ये सब कथा का अप्राकृत शब्द नहीं बोलते, नहीं जानते। कृष्ण बोलते, राधा बोलते, रास बोलते हैं, तो ये सब बोलते हैं, लेकिन चूंकि प्राकृत और अप्राकृत में क्या अंतर है, चूंकि इस बात में अज्ञानी है, विभ्रमित होते हैं, तो इसलिए ही तो इतने बड़े ज्ञानी पंडित होने के भी और इतना सा रसमय कथा बोलते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं हो। तो इसलिए इस मौलिक ज्ञान शरीर और शरीर में क्या अंतर है, इस मौलिक ज्ञान बारंबार सुनना चाहिए। और कौन बारंबार सुनेंगे, सामान्यतः हम देखते हैं कि वो सब साधु जो खाली मनोरंजनी कहानी कहते हैं और सब सुनने वाले सोचते हैं तो ये इससे हम बहुत रास मिलते, लेकिन जब तक हम नहीं समझते शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, तो जितने भी हम रासमय कथा सुनते हैं तो उससे अप्राकृत रास प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं होते। हम भौतिक बुद्धि से ग्रस्त होते हैं और इसलिए राधा कृष्ण रस कथा सुन के भी हम सब कुछ भौतिक जैसे समझ लेंगे और कल्याण नहीं हो। इसलिए प्रभुपाद और सब वास्तविक सद्गुरु तो अनादिकारी लोगों के बीच रस कथा नहीं कहते, रस कथा कहते हैं लेकिन बहुत सावधानी से। वास्तव में ये भगवद गीता रस कथा है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है अप्राकृत रस क्या है, इसलिए हम सोचते हैं कि इस भगवद गीता ज्ञान शुष्क है। तो भगवद गीता में पूर्ण रस है लेकिन हम नहीं सोचते, नहीं समझते, तो ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है, वृत्ति है, यही समझना, प्राकृत और अप्राकृत ये दोनों में क्या अंतर है, प्राकृत अप्राकृत परोक्ष अपरोक्ष प्राकृत अप्राकृत अधोक्षज, तो यही सब समझ, यही सब शब्द समझना बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में। परोक्ष का मतलब जो हम सुनते हैं, I'll take it now. Aparoksha. Ka matlab jo hum sakshat anubhav karte. To wo anubhav do prakar ho sakte, prakrita aur aprakrita. To isliye prakrita aprakrita ye do shabd ka samajhna bahut hi mahatvapurna hai. Aur adhok saja. Param satya gyan hai adhok saja. Jo भौतिक इंद्रियों से ग्रहित नहीं होते, जो अप्राकृत इंद्रियों से अनुभव करना है, वे ही अधोक सज भगवान. हरे कृष्ण. क्षमा कीजिए, मुझे दवा लेना है शरीर की पुष्टि के लिए. मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर भगवान की सेवा में लगाना है, इसलिए शरीर का पालन और पोषण करना चाहिए, केवल इसलिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं है. ओके. हरे कृष्ण. इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंद्रिय सुख के लिए नहीं लगता. Or behind there. Okay.
I will take together anyway. I need to take together.
Okay. It's dirty then. Hare Krishna. Jai Jagannath. Jai 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 Jagannath. Rate cha vamanam drishtva punar janma na vidyate. Aga rat stit Jagannath ka darshan karna hai, punar janma nahi hoga. Lekin usliye Gaurya Vaishnav Jagannath rati yatra mein bhag nahi lete. Jagannath ki seva karne ke liye aate. Hare Krishna. Koi prashna hai? वो प्रश्न नहीं है, बोलना चाहिए.
कि
सामान्य लोग क्या बात है?
चैतन्य भागवत.
हाँ,
श्रीमद् महाराज को रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए.
चैतन्य भागवत.
श्रीमद् महाराज चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए.
हाँ,
सामान्य जो लोग हैं उनको बताते
हैं चैतन्य भागवत. हाँ, लेकिन चैतन्य भागवत में रास कथा तो नहीं, मतलब रास लीला का वर्णन नहीं. चैतन्य भागवत का पढ़ने से जो चैतन्य महाप्रभु का लीला वर्णन मिलते, और चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा मिलती है. वो चैतन्य लीला सुनने से हमारा प्रवेश होते हैं कृष्ण लीला में, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से. अगर हम प्रयास करते हैं व्रज में प्रवेश करना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना, तो संभव नहीं होगा. फिर हमारा प्रवेश आघा बाका पूतना जैसे होगा. आघा बाक पूतना तो सब व्रज में प्रवेश किए हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं है. विपरीत भाव था. जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्रज दर्शन होते, दर्शन का मतलब सेवा भाव से दर्शन होते. हरे कृष्ण. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ।